प्रेज द लॉर्ड। आज का जो बाइबल स्टडी है जीपीए 1, इसका सबसे पहला जो लेसन है उसका टाइटल नया जन्म, द न्यू बर्थ। इसका अर्थ है नई पैदाइश या नया जन्म। हमने सुना होगा अक्सर बॉर्न अगेन, या क्या आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। ये सवाल अगर आपने सुना है तो आज हम जानेंगे नए सिरे से जन्म लेना या नई पैदाइश, नए सिरे से पैदा होना, इसका अर्थ क्या है। What does it mean to be born again? नया जन्म लेना, इसका अर्थ क्या है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया। परमेश्वर जो था वो अक्सर आदम और हव्वा से इतनी नजदीक में उनकी संगति थी कि वो हर शाम में बागे आदम ने जो बगीचा में उनको रखा, उनके साथ हमेशा वो बातचीत करता और साथ साथ चलता। उन्होंने उनकी जो जलाल महिमा से उन्हें ढांक लिया था। हालांकि वे बिना वस्त्र थे, नंगे थे, परंतु परमेश्वर ने अपनी जो महिमा है वो महिमा से उनके शरीरों को ढांका था। उनको एक अच्छा सुंदर सा बगीचे में उन्होंने रखा, उनको वहां रहने के लिए उनको रखा और उनको ये आदेश दिया कि वहां के जितने भी जो पेड़ हैं, जो फल हैं, हर सभी पेड़ों में से फल खा सकते हैं, परंतु एक जो पेड़ है जो उस बगीचे में है उस पेड़ का फल नहीं खाना। और ये जो एक पेड़ था वो पेड़ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल, जो पेड़ जो अच्छाई और बुराई का नॉलेज देने वाला पेड़ था, और जो सैतान, जो सैतान था, उन्होंने हवा को टेम्प्ट किया, उनको खींच लिया अपने इरादों में, और उनको जो परमेश्वर ने आदेश दिया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, उसी पेड़ के जो फल है उसको खाने के लिए उन्हें उत्सुक उकसाया, और हवा ने उस पेड़ का जो फल है न केवल उन्होंने खाया बल्कि वो फल को अपने जो पति है आदम उनको भी खिलाया। ये गुनाह था, ये परमेश्वर के आदेश के खिलाफ जो उन्होंने किया वो गुनाह हो गया। और ये गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है, और इस गुनाह के वजह से वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सके, उनके साथ नहीं संगति बना सके। उनके अंदर जो उनकी आत्मा थी, रूह थी, वो मर गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। हम पढ़ेंगे इसी बात को इज़ेकियल 18 उसका 4 भाग। इज़ेकियल 18 उसका 4 इसमें लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करें वही मर जाएगा। परमेश्वर ने इंसान को, आदम को, हव्वा को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर उन्होंने जान फूंक ली, अपना जो श्वास था वो भर दिया और मनुष्य जीवित हो गया। और जो रूह है, आत्मा जो है, वो है परमेश्वर और इंसान का जो रिश्ता, इसके बारे में हम उत्पत्ति उसका दूसरा चैप्टर और 7वें आयत में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, मिट्टी से बनाया, उसके बाद जीवन का श्वास फूकने के बाद वो जीवित हुआ। और जो आत्मा है, रूह है, वो परमेश्वर और आदम के बीच में संगति। जब आदम ने गुनाह किया, आदम और हवा ने गुनाह किया, तो ये जो रिश्ता है परमेश्वर और इंसान, आदम और हवा के बीच में, जो रोजाना शाम के वक्त बातचीत करना, साथ साथ चलना, क्योंकि गुनाह किया, वो नहीं हो पाया और वो जो रिश्ता है वो मर गया, यानी कि आत्मा मर गई। हम ये बात, जो आत्मा मरने की बात, हम एफिशिएंस उसके दूसरा चैप्टर उसका पहला आयत में हम पढ़ते हैं। इसमें यू लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो हकीकत में वो मर चुके थे, जिस्मानी तौर पे वे जिंदा थे, लेकिन जो परमेश्वर और उनके बीच में जो जो संगति होनी थी वो नहीं हो पाई, और इसके वजह से, गुनाह के वजह से उनको मौत आई, एक रूहानी मौत, उसको कहते हैं रूहानी मौत। और जिस तरह से एक परमेश्वर ने इंसानों को बनाया था, जिस मकसद से, क्योंकि आदम और हवा ने गुनाह किया, वो ना, वो जो मकसद था वो पूरा ना हो पाया गुनाह के वजह से, लेकिन परमेश्वर के पास एक प्लान था। ये जो प्लान यीशु मसीह को इंसानों के गुनाह के खातिर यीशु मसीह को भेजना और उनकी कुर्बानी के जो फल है, कुर्बानी की वजह से फिर से इंसान अपने रचनाकार या जिसने बनाया, सृष्टिकर्ता, उसके साथ फिर से एक रिश्ते में आ सके। जब हम यीशु मसीह को हम अपनाते हैं और ये यकीन करते हैं और ये मानते हैं कि जो क्रूस पर जो हमारे गुनाह के खातिर यीशु मसीह मरा, यकीन करते हैं, मानते हैं और अपनाते हैं, तब हम अपने गुनाह से हम बचते हैं और हमारा पुनर्जीवन हो जाता है, फिर से जिंदगी या नई पैदाइश या नई जिंदगी, बॉर्न अगेन होना। और जो हिस्सा जो फिर से जिंदा होता है वो है हमारा रूह, जो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ आदम ने खोया गुनाह की वजह से, वही हम फिर से, हमारा जो रूह है वो फिर से हम जिंदा होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आती है और हमारे रूह को फिर से जिंदा करता है, ताकि हम एक फिर से रूहानी रिश्ते में परमेश्वर के साथ, हम उनके बेटे यीशु मसीह के साथ हम फिर से एक नए रिश्ते में हम बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि किसे जरूरत है नए सिरे से पैदा होना, या किसे जरूरत है नए सिरे से जन्म लेना? रोमियो 3:23 में ये लिखा है कि सभी लोग ने गुनाह किया है और सभी लोग जो परमेश्वर की महिमा से वंचित है। रोमियो 3:23, इसलिए कि ये सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर जो है वो अपना उद्धार नजात हर किसी के लिए वो उपलब्ध कर देता है। वो अपने प्यार के खातिर, मोहब्बत के खातिर हर इंसान को ये उपलब्धि, उद्धार की उपलब्धि हर किसी को वो दे सकता है और देता है। रोमियो 5:8 में ये लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम गुनहगार ही थे, जब हम पाप कर ही रहे थे, तभी यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी। ये परमेश्वर की मोहब्बत है, प्यार है। परमेश्वर जानता था कि हम कभी मौत से नहीं बच सकते, इसके खातिर उन्होंने यीशु मसीह को भेजा हमारे गुनाह गुनाह से बचने के लिए, गुनाह की खातिर, उनके बलिदान की खातिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। उन्होंने हर एक इंसान जो मनुष्य है इस धरती का, हर एक इंसान या मनुष्य को जो गुनाह है, पाप है, उन्होंने अपने और अपने पर ले लिया। जो आज जिंदा है और जो आगे जिंदा रहेंगे, हर एक इंसान का जो गुनाह है वो अपने पे ले लिया, ताकि जो गुनाह है अपने पे लेने के बाद उस पे उन्होंने जान दी, ताकि हम जिंदा रहे। यूहन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने निकोडिमस, जो यूहन चैप्टर 3 में आता है, रात में निकोडिमस जो एक फरीसी है वो यीशु मसीह को मिलने आता है, तो यीशु मसीह उनको कहता है कि जॉन यूहन 3:3-6 पढ़ेंगे हम, यूहन 3:3-6 यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोडिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हम देखते हैं यहां यीशु मसीह ने निकोडिमस को साफ कहा कि परमेश्वर के राज्य को अगर देखना है या परमेश्वर के राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें नया जन्म लेना है। रोमियो का 3:10, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि एक भी मनुष्य, एक भी इंसान इस धरती पे नहीं जिन्होंने गुनाह नहीं किया। तो हम देखते हैं और हम समझते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हमारा जो गुनाह है वो छोटा है, दूसरों के गुनाह बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर यहां अपने वचन में लिखता है कि हर एक जो इंसान इस धरती पे है सभी गुनहगार है, सभी ने गुनाह किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सवाल अब ये है कि हमें क्या करना है कि हम नए सिरे से हम पैदा हो। चार बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ये महसूस और एहसास होना है कि परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हमारे जिंदगी के लिए जिंदगी का जो जवाब है, जो जो एक आंसर है उनके पास है। दूसरी जो बात है, हम मानते हैं और हमें यकीन करना है कि परमेश्वर और हमारे बीच गुनाह जो एक चीज है जिन्होंने हमें और परमेश्वर को अलग कर दिया है। गुनाह के वजह से हम परमेश्वर से दूर हैं। तीसरी जो बात है, इसका जो हल है, इस समस्या का हल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर और मेरे बीच में एक ब्रिज बनाता है, एक रास्ता बनाता है जो परमेश्वर और मेरे मुझे मिला सकता है। यीशु मसीह वो ब्रिज है। और चौथी जो बात है, परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करता है, गुनाह के वजह से मैं और परमेश्वर दूर है। यीशु मसीह ब्रिज है परमेश्वर और मेरे बीच में, ये जो तीन बातें मिलाकर हमें ईमान यीशु मसीह में रखना है, ईमान हमें परिवार पर नहीं, हम पर नहीं, यीशु मसीह पे। तो रोमियो 10 उसका 9 और 10 साफ साफ उद्धार के बारे में लिखा है कि हम किस तरह से हमारे गुनाह से बच सकते हैं। रोमियो 10 उसका 9 और 10, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार, माफ कीजिएगा, रोमियो 10 उसका 9 और 10 कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे अपने मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम यीशु मसीह को कहते हैं कि हमने गुनाह किया, हम मानते हैं कि हमारे गुनाह के खातिर आपको क्रूस पे जान देनी पड़ी। हमारे गुनाह ही हैं जो परमेश्वर और हमारे बीच में बाधा है। अगर हम मानते हैं कि यीशु मसीह हम गुनहगार हैं, हम मानते हैं कि हमारे गुनाह के खातिर हमारे गुनाह को आपने अपने अपने ऊपर ले लिया है और हम निश्चय करते हैं कि हम मन फिराते हैं, गुनाह से हम तौबा करते हैं, हम गुनाह की जो रास्ते हैं उसे छोड़कर हम आपके रास्ते पे चलते हैं, शुक्रिया करते हैं यीशु मसीह को क्योंकि उन्होंने हमारे जो गुनाह है उसके लिए जान दी, और उसके बाद हमारी जिंदगी में आने के लिए निमंत्रण हम करते हैं। यीशु मसीह को कहते हैं कि हम आपको हमारे जिंदगी में हम आने का न्योता देते हैं, हमारे हृदय में आओ और हमारी जिंदगी को संवारो। अगर हम ऐसे कहते हैं यकीन से, ईमान से, भरोसे से, तो हमारा उद्धार होता है। अब उद्धार होने के बाद हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन होता है और हमारी जिंदगी की मायने क्या है, हम देख सकते हैं। जब हम नए सिरे से हम पैदा होते हैं, हमारा नया जन्म होता है, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हमारे भाई, हमारे बहन होते हैं यीशु मसीह के बच्चे, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपनाया अपने परमेश्वर के प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। दूसरी जो बात है, हमें पूरी तरह से जिंदगी हमें मिल जाती है कि यीशु मसीह ने कहा यूहन 10:10 में चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताए से पाए। तीसरी जो बात है, हमें जीवन, जो जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी मिलती है, अनंत जीवन जिसे कहते हैं। यूहन का 5, उसका 24 में ये लिखा है, 5 24 में तुम से सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। चौथी जो बात है, अब जब हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, अब जब हम परमेश्वर के पुत्र बेटे बेटियां बने हैं, तो हम अब परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। पहला योहान 5:14-15, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। अब एक एक भरोसा होता है परमेश्वर के संतान होने के नाते कि हम जो मांगते हैं वो परमेश्वर सुनता है। पांचवी जो बात है, अब जब हम परमेश्वर के संतान बने हैं तो हम शैतान और इस दुनिया पे विजय हो सकते हैं। और छठी जो बात है, वो बाइबल कहते हैं कि जब हमने हमारा नया जन्म हुआ है, नई सृष्टि हम बन चुके हैं, तो बाइबल दूसरा कुरिन्थियंस 5:17 में ये कहता है कि जो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नई हो गई। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता के नाते, तो हमारी नई रचना होती है। जो पुराना है, जो पुरानी पाप से भरी जिंदगी, गुनाह से भरी जिंदगी, ये सब मिट जाता है और हमारी नई सृष्टि बन जाती है। एक साफ सुथरी जिंदगी हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। नए सिरे से जन्म लेना, और एक हम वचन पढ़ेंगे बाइबल में, यूहन्ना 1:10-13 हम 13 पढ़ेंगे। वह जगत में था, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जो कोई इंसान तोबा कर लेता है, जो कोई मनुष्य ये मानता है कि मेरे गुनाह के खातिर परमेश्वर प्रभु आपको अपनी जान देनी पड़ी क्रूस पर, आपको अपना लहू का बलिदान देना पड़ा, मेरे खातिर आप मरे, मैं तौबा करता हूं और आपको स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं, तब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं। नए सिरे से पैदा होना जरूरी है परमेश्वर के राज्य को देखना, परमेश्वर के राज्य प्रवेश करने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। आज हमने ये सीखा जीपीआई 1 चैप्टर 1, न्यू बर्थ, नया जन्म, नई पैदाइश, कि मनुष्य जो इस धरती पे हैं सारे पापी हैं, गुनेगार हैं और परमेश्वर का जो महिमा है उससे वंचित है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना महान है कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, तौबा करें, मन फिराएं और उनके पीछे उनके रास्ते पे चलें, वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को बदलें, हमारा उद्धार होगा। अनंत जीवन के हम हकदार होंगे और हमेशा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, शुक्र करते हैं कि आपने हमें आज नई पैदाइश या नए सिरे से जन्म लेना इसके बारे में समझाया। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो दिल है उसे खोले, सोच है उसके बदल दे, दिमाग को खोले ताकि हम समझे कि आप हमसे क्या कहते हैं, सच्चाई को ग्रहण करने की हमें शक्ति दे, आपके पीछे चलने के लिए हमें ताकत दे, हर गुनाह के रास्ते को छोड़ने के लिए हमें ताकत दे और आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान यह जगह देने के लिए हमें मदद करें। प्रभु गुनाह को माफ करें, हमारे दिल के अंदर आए। हम यकीन करते हैं, मानते हैं कि हमारे गुनाह के खातिर आपको क्रूस पर जान देनी पड़ी। आज मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। आपने मेरा जो गुनाह है वो आप पर ले लिया और मेरी जिंदगी को बचाने के लिए आपने अपनी जिंदगी को मिठाया। मैं तौबा करता हूं प्रभु और मैं यकीन करता हूं कि आप न सिर्फ क्रूस पर मरे, आपको दफनाया गया और मैं यकीन करता हूं कि तीसरे दिन आप फिर से जी उठे और आज परमेश्वर के दाएं हाथ पे आप मौजूद है। मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप मेरे हृदय में आए, मेरी जिंदगी में आए, आप मेरी जिंदगी को चलाएं। मैं आज से तौबा करता हूं हर एक गुनाह से, जो गलत बात है जो आप मुझे बताएंगे उसे मैं तौबा करता हूं। उसके लिए मुझे मदद कीजिए प्रभु। आगे की जिंदगी, जो नई जिंदगी आपने दी है, मुझे संभालने के लिए मुझे मदद कीजिए और यकीन और भरोसा करता हूं कि आप मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता है और मैं यकीन करता हूं कि आज आपने मेरा जो नाम है वो जिंदगी की किताब में दर्ज की है और मैं अगर मैं मरता हूं तो मैं यकीन करता हूं कि मैं आपके साथ स्वर्ग में रहूंगा। प्रभु आप महान हैं, मुझे मदद कीजिए। ये जो छोटी सी प्रार्थना है प्रभु आपके नाम में करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।